एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
स्वागत। आज हम अमेरिकी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक स्तंभ पर बात करने वाले हैं।
जी।
एक ऐसा उपन्यास जिसने न सिर्फ साहित्य जगत को बल्कि अमेरिकी समाज की अंतरात्मा को भी काफी हद तक झकझोर दिया था।
बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं जॉन स्टाइनबेक के 1939 में आए उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ रैथ की।
हाँ, एक कालजयी कृति।
जॉन स्टाइनबेक, जिनका जन्म कैलिफोर्निया की सेलिनास घाटी में हुआ, वो अपनी मिट्टी से बहुत गहरे जुड़े हुए लेखक थे, है ना?
हाँ बिल्कुल, उनकी लेखनी में वो जुड़ाव साफ दिखता है। उन्होंने 20वीं सदी के अमेरिका की, खासकर वो जो अनकहा सच था, जैसे महामंदी और डस्ट बोल के दौर में जो प्रवासी मजदूर संघर्ष कर रहे थे, उनकी पीड़ा को आवाज दी।
हाँ, और उन्हें पुलित्जर और नोबेल पुरस्कार भी मिले। लेकिन शायद उनकी असली पहचान वो है जिस तरह उन्होंने आम आदमी के दुख दर्द को दिखाया।
जी, सहानुभूति और यथार्थ का वो जो मिश्रण है उनकी लेखनी में, वो कमाल का है।
ये उपन्यास भी उसी दौर की उपज है, मतलब अमेरिका में महामंदी चल रही थी।
हाँ, और साथ ही वो डस्ट बोल वाला संकट, मध्य पश्चिम के राज्यों में भयानक सूखा, धूल भरी आंधियां, खेती पूरी तरह चौपट हो गई थी।
और स्टाइनबेक ने ये सब सिर्फ पढ़ा नहीं था, उन्होंने खुद अनुभव किया था।
बिल्कुल, वो कैलिफोर्निया के खेतों में प्रवासी मजदूरों के बीच रहे, उनके हालात देखे, और उसी अनुभव से ये उपन्यास निकला है।
लेकिन छपते ही ये किताब काफी विवादों में भी आई।
हाँ, बहुत ज्यादा। कहीं इसे जलाया गया, कहीं बैन कर दिया गया, इसे कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा तक कहा गया।
बाप रे।
लेकिन दूसरी तरफ इसे सराहा भी गया और पुलित्जर पुरस्कार भी मिला।
तो आज हम इसी उपन्यास पर गहराई से बात करेंगे, जोट परिवार की वो यात्रा, उनके संघर्ष, और क्या ये आज भी प्रासंगिक है, इस सब पर।
जी जरूर। कहानी शुरू होती है 1930 के दशक के ओक्लाहोमा से। सोचिए, जमीन एकदम सूखी, धूल उड़ रही है हर तरफ, और उम्मीदें जैसे आसमान से बरसना बंद हो गई हैं।
कैसा माहौल होगा वो।
और यहीं हम मिलते हैं जोड़ परिवार से। ये लोग पीढ़ियों से किसान रहे हैं,
अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल। लेकिन अब सूखा, वो धूल के भयानक तूफान, और फिर मशीनों का आना, मतलब वो ट्रैक्टर जिसे कहते हैं, उसकी वजह से उनकी जमीन उनके हाथों से जा रही है। उनकी पूरी दुनिया ही जैसे उजड़ रही है।
और इसमें बैंकों का भी बड़ा हाथ था।
हाँ बिल्कुल। स्टाइनबेग उन्हें किसी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक, मतलब एक चेहरा विहीन अमानवीय ताकत की तरह दिखाते हैं। बैंक उनकी जमीनें हड़प रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर वो कॉर्पोरेट खेती हो सके।
तो जोट परिवार के पास क्या बचा फिर?
उनके पास बचा है बस एक सपना।
और उस सपने को हवा दे रहे हैं वो रंगीन पर्चे जो कैलिफोर्निया से आ रहे हैं।
हाँ, जिनमें काम और खुशहाली का वादा है।
हाँ, भरपूर काम का वादा।
तो इसी झूठी उम्मीद में पूरा परिवार, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब अपना जो भी टूटा फूटा सामान है वो एक पुरानी सी हटसन ट्रक में लादकर निकल पड़ते हैं
रूट 66 पर, पश्चिम की तरफ।
हाँ, रूट 66 पर, एक ऐसी यात्रा पर जिसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता।
और यहीं से, मतलब जो असल संघर्ष है ना उपन्यास का, वो शुरू होता है। और ये कई परतों में है।
जी।
एक तरफ तो ये हाड़ मास के इंसानों की सड़क पर बस टिके रहने की लड़ाई है।
हाँ, रोजमर्रा की जद्दोजहद।
और दूसरी तरफ उस पूरी व्यवस्था से लड़ाई है जो उन्हें इंसानी नहीं समझ रही।
बिल्कुल, बड़ी कंपनियों की खेती बनाम छोटे समुदायों का टकराव।
और शायद सबसे बढ़कर ये उस अमेरिकन ड्रीम के टूटने की कहानी है, जहाँ लगता है कि मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत ही नहीं रही।
हाँ, और उन्हें वहाँ ओके कहकर अपमानित किया जाता था।
ये सिर्फ जोट परिवार की कहानी नहीं थी, मतलब?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लाखों बेघरबार अमरीकियों का दर्द था जो उस वक्त काम की तलाश में भटक रहे थे।
तो ये उपन्यास कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है ना, जैसे क्या एक अकेला परिवार ऐसी बेरहम व्यवस्था के सामने टिक सकता है?
हाँ, और जब पेट पालना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाए तो परिवार, रिश्ते, मूल्य, इन सब का क्या होता है?
क्या ये सब बिखर जाते हैं?
और जब समाज ही आपको बेकार समझने लगे तो आप अपनी इंसानियत कैसे बचाए रखते हैं?
इन्हीं सवालों से जूझते हुए हमें किरदारों से मिलना होगा। बताइए उनके बारे में।
जी, सबसे पहले तो है टॉम जोड, जो कहानी के नायक हैं। वो हत्या के जुर्म में सजा काटकर पैरोल पर घर लौटे हैं। शुरू में उनका रवैया बहुत व्यवहारिक है, बस अपना और अपने परिवार का देखो, मुसीबत से दूर रहो,
बस जिंदा रहना है।
हाँ, फिर है माँ जोड, वो इस परिवार की रीढ़ है, असल ताकत।
उनमें गजब की शक्ति लगती है।
हाँ, अपार शक्ति और धीरज। उनका बस एक ही मकसद है, कुछ भी हो जाए परिवार को एकजुट रखना है। वो चट्टान की तरह है।
और पाजोड़ जो पारंपरिक मुखिया थे।
हाँ, पाजोड़ वो पारंपरिक मुखिया तो है, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं उनकी पकड़ ढीली पड़ती जाती है। वो लाचार महसूस करते हैं क्योंकि वो परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे।
उनका आत्मविश्वास टूटता जाता है।
हाँ, उनकी आत्मा जैसे धीरे धीरे टूट रही है। और एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है जिम केसी,
पूर्व पादरी।
जी, पहले पादरी थे लेकिन अब पारंपरिक धर्म से उनका विश्वास उठ गया है। उन्हें एक नई तरह की आध्यात्मिकता मिली है, इंसानियत की सामूहिक आत्मा में।
ओवरसोल।
हाँ, ओवरसोल, कि हम सबकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक ही बड़ी आत्मा का हिस्सा है। वो एक तरह से उपन्यास की दार्शनिक आवाज बन जाते हैं।
और रोज ऑफ शैरन, टॉम की बहन।
हाँ, रोज ऑफ शैरन, वो गर्भवती है और उसके मन में कैलिफोर्निया को लेकर बहुत सुनहरे पर भोले सपने हैं।
एक आम जिंदगी का सपना।
बिल्कुल, एक छोटा सा घर, पति का साथ, इनके अलावा दादा दादी, अंकल जॉन, बच्चे, ये सब मिलकर उस दौर के भटके हुए बेसहारा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इन किरदारों का जो शुरुआती तानाबाना है वही बहुत कुछ कह देता है। टॉम का वो आत्मकेंद्रित रवैया, माँ की वो दृढ़ता, केसी का वो विश्वास का संकट और नई राह की तलाश,
और पा का घटता अधिकार।
हाँ, जो आर्थिक लाचारी का प्रतीक है, और रोज ऑफ शैरन के वो मासूम सपने,
ये सब मिलकर हमें आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करते हैं।
और ये भी दिखाते हैं कि कैसे संकट पारंपरिक भूमिकाओं को बदल देता है।
माँ का उभरना और पा का पीछे हटना।
बिल्कुल। तो अब शुरू होती है वो यात्रा रूट 66 पर, जिसे स्टाइनबेक मदर रोड कहते हैं।
हाँ, और ये रास्ता जिंदगी जैसा ही है, उम्मीदें भी देता है और इम्तिहान भी लेता है।
उनका वो पुराना ट्रक।
हाँ, वो खटारा ट्रक बार बार खराब होता है, हर मील एक चुनौती है, लेकिन वो अकेले नहीं है सड़क पर।
उन्हें अपने जैसे और भी लोग मिलते हैं,
हजारों परिवार, सब एक ही नाव में सवार, और यही जरूरतें नए रिश्ते बनाती हैं। जैसे उनका विल्सन परिवार से जुड़ना, दुख में एक दूसरे का सहारा बनना, ये इंसान की फितरत है शायद।
लेकिन ये सफर सिर्फ चलने का नहीं, खोने का भी है।
हाँ, बहुत कुछ खोता है। यात्रा शुरू होते ही ग्रामपा जोड़ दम तोड़ देते हैं,
जैसे इस जमीन छोड़ने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए।
बिल्कुल, ऐसा लगता है जमीन से उनका रिश्ता इतना गहरा था कि उसे छोड़ने का ख्याल ही जानलेवा साबित हुआ। उन्हें वहीं सड़क किनारे बिना किसी निशान के दफना दिया जाता है।
उफ।
फिर रेगिस्तान की भयानक गर्मी में ग्रैंडमा भी चल बसती हैं, और यहाँ माँ जोड़ एक बहुत कठोर फैसला लेती हैं।
क्या?
वो उनकी मौत की खबर कैलिफोर्निया की सीमा पर जो जांच चौकी है उसे पार करने तक छुपाए रखती हैं,
ताकि उन्हें रोका ना जाए।
हाँ, ये दिखाता है कि हालात इंसान को कितने बेबस और मतलब नैतिक रूप से कितने मुश्किल फैसले लेने पे मजबूर कर देते हैं।
पेट की आग बुझाने की लड़ाई में।
हाँ, आत्मा पर बोझ रखना पड़ता है कभी कभी।
ये घटनाएं सिर्फ मौतें नहीं है, ये गहरे प्रतीक हैं। ग्रैंडपा की मौत मतलब जड़ों से उखड़ने का दर्द।
बिल्कुल, और ग्रैंडमा की मौत को छुपाना, वो उस हताशा को दिखाता है जहां जिंदा रहने की जरूरत हर चीज पर भारी पड़ने लगती है।
और इस यात्रा में उनकी उम्मीदें भी धीरे धीरे कम होती जाती है ना।
हाँ, जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, उन्हें कैलिफोर्निया से लौटते हुए लोग मिलते हैं, थके हारे पराजित,
और वो बताते हैं कि वहां कोई स्वर्ग नहीं है।
हाँ, वो बताते हैं कि वहां हालात और भी बुरे हैं, शोषण का नर्क है।
और फिर कैलिफोर्निया पहुंचकर सपने टूट जाते हैं।
हाँ, हकीकत उनके मुंह पर तमाशा मारती है। वो वादा किया गया देश कहीं नहीं मिलता, स्वागत की जगह मिलती है नफरत, वो ओकी का लेबल, और बेरहम शोषण। काम करने वाले इतने ज्यादा हैं कि मजदूरी इतनी कम मिलती है कि पेट भरना भी मुश्किल है।
उन्हें रहना कहाँ पड़ता?
गंदे भीड़ भरे कैंपों में, जिन्हें मजाक में अमीर राष्ट्रपति हूवर के नाम पर हूवरविल्स कहा जाता था।
अच्छा।
गंदगी, बीमारी, भुखमरी और ऊपर से पुलिस का डर, यही उनकी नई जिंदगी बन जाती है।
इस दबाव में तो परिवार का बिखरना लाजमी है।
हाँ, और ऐसा होता भी है। टॉम का भाई नूह, वो बस चुपचाप एक दिन नदी किनारे चला जाता है और लौटता नहीं।
ओहो।
और रोज ऑफ शैरन का पति कॉनी, जो इतने सपने दिखाकर लाया था,
हाँ,
वो अपनी गर्भवती पत्नी को वहीं छोड़कर भाग जाता है।
ये तो बहुत ही दुखद है।
इस अंधेरे में बस एक छोटी सी रोशनी दिखती है, विडपैच नाम के एक सरकारी कैंप में।
वहां क्या लगता?
वो साफ सुथरा था, वहां लोग खुद अपना शासन चलाते थे और पहली बार जोड़ परिवार को थोड़ी इज्जत महसूस होती है।
एक मानवीय जगह।
हाँ, वो कैंप जैसे दिखाता है कि समाज कैसा हो सकता है, मानवीय, सहयोगी। लेकिन एक दिक्कत थी।
क्या?
वहां काम नहीं मिलता था,
तो पेट पालने के लिए उन्हें वो जगह भी छोड़नी पड़ती है। ये कैलिफोर्निया वाला हिस्सा तो मतलब अमरीकी सपने का जैसे पोस्टमार्टम ही कर देता है।
बिल्कुल,
स्टाइनबेक बहुत साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, ये एक सोची समझी व्यवस्था है।
हाँ, खेतों के मालिक जानबूझकर ज्यादा मजदूर बुलाते हैं ताकि मजदूरी कम देनी पड़े, मुनाफा ज्यादा हो।
वो प्रचुरता के बीच कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं। संतरे सड़ रहे हैं लेकिन भूखे बच्चों को नहीं मिल रहे।
जी, स्टाइनबेक जिस तरह इस विरोधाभास को दिखाते हैं वो दिल छीर देता है। ये अन्याय इतना साफ दिखता है।
हाँ, और पाठक का गुस्सा भी बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है? कहानी और तेज होती है।
हाँ, इसके बाद वे एक आड़ू के बागान में काम करने जाते हैं, पर जल्दी पता चलता है कि वहाँ पहले से हड़ताल चल रही है
और इन्हें हड़ताल तोड़ने वालों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
बिल्कुल, और यही उनकी मुलाकात फिर से जिम केसी से होती है।
अच्छा, केसी अब क्या कर रहे हैं?
केसी अब मजदूरों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनके हक के लिए लड़ना सिखा रहे।
एक श्रमिक आयोजक बन गए हैं।
हाँ, फिर एक रात जब केसी और कुछ हड़ताली मजदूर मीटिंग कर रहे होते हैं तो बागान के गार्ड और पुलिस उन पर हमला कर देते हैं।
ओ।
और उसी झड़प में केसी को बेरहमी से मार दिया जाता है।
नहीं,
मरते हुए उनके आखिरी शब्द होते हैं, तुम लोग नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो।
लगभग ईसा मसीह जैसे शब्द।
हाँ, केसी की मौत देखकर टॉम, जो अब तक खुद को बचाने में लगा था, वो अपना आपा खो बैठता है।
उसने क्या किया?
उसने केसी के हत्यारे को मार दिया। अब वो भगोड़ा है, परिवार उसे छुपाता है, रात के अंधेरे में उसे खाना पहुंचाता है।
तो यही टॉम का पूरा रूपांतरण होता है।
बिल्कुल, केसी के विचारों ने, उसके बलिदान ने टॉम को बदर दिया है।
वो ओवरसोल वाला विचार।
हाँ, अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं है, वो उन सभी भूखे और सताए हुए लोगों के लिए है।
वो व्यक्तिगत अस्तित्व से उठकर सामूहिक चेतना तक पहुंच जाता है।
जी,
वो सामाजिक न्याय की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है।
ये सवाल भी उठता है, अन्याय के खिलाफ हिंसा का रास्ता सही है या शांतिपूर्ण संगठन का?
स्टेनबेक शायद दोनों की जटिलता दिखा रहे हैं, कोई आसान जवाब नहीं देते हैं। और फिर आता है उपन्यास का चरमोत्कर्ष।
हाँ, हालात और भी बिगड़ जाते हैं। सर्दियों की बारिश शुरू हो जाती है, कपास चुनने का काम खत्म हो गया है।
उनके पास रहने की जगह?
एक पुराना टपकता हुआ मालगाड़ी का डिब्बा, बॉक्स कार। हालात पहले से भी ज्यादा खराब हैं।
और इसी माहौल में रोज ऑफ शैरन।
हाँ, इसी भयानक माहौल में रोज ऑफ शैरन बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा मृत पैदा होता है।
ओह नहीं, ये तो जैसे सारी उम्मीदों की मौत।
बिल्कुल, उनके सारे सपनों की मौत का प्रतीक। अंकल जॉन उस मृत बच्चे को एक सेब के बक्से में रखकर बाढ़ के पानी में बहा देते हैं, जैसे दुनिया को दिखा रहे हों कि देखो तुम्हारी व्यवस्था ने क्या किया है।
जितना शक्तिशाली और दुखद दृश्य है ये।
फिर बाढ़ का पानी बॉक्स कार में घुसने लगता है।
जी,
माँ जॉर्ड फैसला करती हैं कि उन्हें ऊंची जगह ढूंढनी होगी।
वो कहाँ जाते हैं?
पानी में चलते हुए पास के एक खलिहान में पनाह लेते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जो अपने भूख से मर रहे पिता के पास बैठा है।
आदमी बहुत कमजोर है।
हाँ, इतना कमजोर कि कुछ खा भी नहीं सकता।
तब वो आखिरी दृश्य आता है।
हाँ, वो दृश्य जो शायद अमेरिकी साहित्य के सबसे यादगार और विवादास्पद दृश्यों में से एक है।
माँ जॉर्ड और रोज ऑफ शैरन एक दूसरे को देखती हैं।
हाँ, कोई शब्द नहीं कहे जाते, बस आंखों ही आंखों में एक समझ बनती है।
और रोज ऑफ शैरन, जिसका अपना बच्चा अभी मरा है।
हाँ, जिसके स्तनों में अभी भी दूध है, वो उस अजनबी मरते हुए आदमी के पास जाती है और उसे अपना दूध पिलाती है।
ये अंत, ये वाकई झकझोर देता है। कई लोगों ने इसे विभत्स कहा होगा।
हाँ, अश्लील भी कहा गया, लेकिन अगर इसे गहरे स्तर पर देखें
तो ये निराशा के जन्म पर जीवन और करुणा का अद्भुत प्रमाण है।
बिल्कुल, जहाँ सब कुछ टूट चुका है, उम्मीद मर चुकी है, वहाँ इंसानियत का सबसे बुनियादी रिश्ता, पोषण देने का, जीवन बचाने का सामने आता है।
ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा टूटन में भी जुड़ाव और दया संभव है।
जी, ये व्यक्तिगत दुख को एक सार्वभौमिक मानवीय कृत्य में बदल देता है। स्टाइनबेक ने जैसे पूरी किताब का सार इस एक दृश्य में रख दिया हो।
इस पूरी दर्दनाक यात्रा और इस अंत के पीछे स्टाइनबेक किन बड़े विचारों की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो शायद सामाजिक और आर्थिक अन्याय।
हाँ, ये तो केंद्र में है। बैंक, बड़े जमींदार, कॉर्पोरेशंस, ये सब एक अमानवीय राक्षस की तरह हैं,
जो मुनाफे को इंसान से ऊपर रखते हैं।
बिल्कुल। और स्टाइनबेक दिखाते हैं कि ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं, ये जानबूझकर रचा गया शोषण का तंत्र है।
और इसी अन्याय के सामने वो मानवीय गरिमा और दृढ़ता भी दिखाते हैं।
हाँ, इतनी तकलीफों के बावजूद जोड़ परिवार और उनके जैसे लोग पूरी तरह टूटते नहीं। वो दया के छोटे छोटे कामों से, एक दूसरे की मदद से अपनी इंसानियत बचाए रखते हैं।
माजोड़ का वो कहना, हम वो लोग हैं जो जीते हैं, हम चलते रहेंगे।
हाँ, वो अदम्य जिजीविषा, गरिमा बाहरी हालात से नहीं, अंदर से आती है।
और इसी से जुड़ा है सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का विचार, मैं से हम की तरफ बढ़ना।
जी, केसी का दर्शन और टॉम का बदलाव ये इसी पर जोर देते हैं। अकेले लड़कर इस व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता,
संगठन में ही ताकत है। उस स्टाइनबेक का कथन है ना, मालिकाना हक की गुणवत्ता आपको हमेशा मैं में जमा देती है
और आपको हमेशा हम से काट देती है। हाँ, ये पूंजीवाद और व्यक्तिवाद पर सीधी टिप्पणी है।
परिवार और समुदाय की परिभाषा भी बदलती है।
हाँ, पारंपरिक ढांचा टूटता है, माँ ज्यादा ताकतवर बनती है, लेकिन साथ ही मुसीबतें नए समुदाय बनाती हैं।
विल्सन परिवार, वीड पैच कैंप।
हाँ, ये दिखाते हैं कि जरूरत के वक्त परिवार सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं रहता। वो उन सब तक फैल जाता है जो एक ही दुख झेल रहे हो।
ये साझा इंसानियत की एक उम्मीद भरी तस्वीर है, अंधेरे में भी।
बिल्कुल।
प्रकृति का जिक्र भी जरूरी है, मनुष्य और प्रकृति का संबंध।
हाँ, डस्ट बोल सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, वो खुद प्रकृति के शोषण का नतीजा है।
स्टाइनबेक जमीन के बर्बाद होने और इंसानों के अमानवीयकरण के बीच एक रिश्ता देखते हैं।
जी, जो मानसिकता जमीन का अनादर करती है, वही इंसानों का भी शोषण करती है।
और आखिर में एक तरह का आध्यात्मिक बदलाव भी दिखता है।
हाँ, केसी का मानवतावाद, पारंपरिक धर्म की जगह इंसानी जुड़ाव और प्यार पर जोर।
कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, बस वो है जो लोग करते हैं।
बिल्कुल। और टॉम का सामाजिक चेतना की तरफ बढ़ना भी एक तरह का आध्यात्मिक जागरण ही है,
जो इसी दुनिया में न्याय और जिम्मेदारी की बात करता है।
जी, ये सिर्फ पेट की आग बुझाने की नहीं, आत्मा के अर्थ ढूंढने की लड़ाई भी बन जाती है।
और स्टाइनबर्ग की जो कहने की शैली है वो भी बहुत खास है।
हाँ, वो संरचना बहुत अनूठी है। जोड़ परिवार की कहानी के साथ साथ वो छोटे अध्याय,
अंतराली अध्याय।
हाँ, अंतराली अध्याय, जो उस दौर के बड़े सामाजिक ऐतिहासिक माहौल पर टिप्पणी करते हैं,
जिसे हम जूम इन और जूम आउट कर रहे हों।
बिल्कुल। इससे कहानी को गहराई और एक व्यापक नजरिया मिलता है।
और भाषा का इस्तेमाल
वो भी कमाल का है। पात्रों की बोली एकदम असली लगती है, ओक्लाहोमा के किसानों की भाषा।
किरदारों में जान आ जाती है।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उन अंतराली अध्यायों में भाषा काव्यात्मक, लगभग बाइबल जैसी हो जाती है। और वो विवरण,
संवेदी विवरण।
हाँ, वो धूल जो हर चीज में घुस जाती है, वो सड़ते हुए फल, वो हार तोड़ मेहनत का दर्द, वो सब महसूस होता है पढ़कर।
स्टाइनबेक सिर्फ बताते नहीं, महसूस कराते हैं, और इसीलिए इसका भावनात्मक प्रभाव इतना गहरा है।
जी, गरीबी, भूख, अपमान का इतना सच्चा चित्रण पाठक को हिला देता है। हम जोड़ परिवार के साथ जुड़ जाते हैं।
उनकी छोटी जीतें खुशी देती हैं, उनका नुकसान अपना लगता है।
और यही सहानुभूति इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है,
ये अनियंत्रित लालच, सामाजिक भेदभाव, व्यवस्था की नाकामी, इन सबका एक कालातीत दस्तावेज है।
ये अमेरिकी सपने पर एक बड़ा सवालिया निशान है।
लेकिन जैसा हमने कहा, ये सिर्फ नाउम्मीदी की दास्तान नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान की हिम्मत, उसके लचीलेपन का भी महाकाव्य है।
माँ जोड़ की गरिमा, केसी का बलिदान, टॉम का बदलाव
और रोज ऑफ शैरन का वो अंतिम कार्य, ये सब दिखाते हैं कि प्रेम, त्याग और समुदाय की भावना सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकती है।
टॉम का वो आखिरी वादा याद है ना, जो वो माँ से करता है।
हाँ, जहाँ कहीं भी भूखे लोगों के खाने के लिए लड़ाई होगी, मैं वहाँ हूँगा।
ये संघर्ष जारी रखने का संकल्प है।
जी,
तो आखिर में ये उपन्यास यही दिखाता है कि भयानक व्यवस्थागत क्रूरता और निराशा के बीच भी इंसान की करुणा और एक दूसरे से जुड़ने की चाह वो बची रह सकती है।
हाँ, और शायद वही हमें इंसान बनाए रखती है। यह हमें याद दिलाता रहता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शायद एक दूसरे के प्रति ही है,
खासकर तब जब दुनिया बेरहम हो जाए।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।